मणवज्जम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयति मिरं जिनम् नमः। यह दौला ग्रंथ है जो श्री वीरसेन आचार्य ने टीका रची थी। मूल ग्रंथ का नाम षटखंडागम है, जिसे भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने रचा था और उनके उपदेशक थे धरसेन आचार्य। अब हम 72 पेज पर आए हैं। ये ग्रंथ के कर्ता कौन है उसकी बात यहाँ चल रही है। तो ग्रंथ के कर्ता दो प्रकार से कहे जाते हैं, अर्थकर्ता और ग्रंथकर्ता। तो अर्थकर्ता हमारे भगवान महावीर है, क्योंकि उनका शासन चल रहा है, उनके उपदेश के अनुसार ये आगम हमें प्राप्त है। ग्रंथकर्ता में गणधर आचार्य जो हुए, जिन्होंने भगवान महावीर का उपदेश ग्रहण करके द्वादशांग श्रुत की रचना की, वे ग्रंथ के कर्ता हैं। मूल कर्ता महावीर भगवान, और फिर उनके अनुसार ये जो अनुग्रंथ कर्ता का है, मूल ग्रंथ कर्ता वर्धमान भट्टारक, और अनु यानी उनके फॉलोअर जो है, उनके अकॉर्डिंग टू मूल उपदेश, मूल उपदेश के अनुसार, उसमें कोई अपना उसमें नहीं डाला है। तो ये जो उत्तर ग्रंथकर्ता कहेंगे या अनुग्रंथकर्ता है, वो गणधर है। फिर उन्होंने लोहार्य को उपदेश दिया, उन्होंने जम्मू स्वामी को, इन्हें परिपाटी क्रम से। ऐसे आगे आगे भी हमने कल बहुत से आचार्यों के नाम वगैरह देखे थे। अंतिम जो श्रुत केवली कहलाते कि द्वादशांग का ज्ञान था, उनका नाम था भद्रबाहू। और उसके बाद में पूरे ही द्वादशांग का ज्ञान नहीं रहा, यानी 11 अंग 14 पूर्वों में से आगे चलकर फिर 10 पूर्वों का ज्ञान रहा, अगले 4 पूर्वों का एक देश ज्ञान रही, उसके आगे 11 अंगों का ज्ञान था मगर वो बाकी पूर्वों का एक देश, ऐसे करते करते सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान बच रहा। जब इतनी बात हुई तो धरसेन आचार्य को विकल्प आया कि ये ऐसे होगा तो अभी तो कालांतर से तो श्रुत का तो पूरा ही विच्छेद ही हो जाएगा, इसलिए वो शब्द रूप से, लिखित रूप से उसकी रचना करने की उनको कल्पना हुई। और इसलिए उन्होंने मुनि संघ को पत्र भेजा कि मुझे ऐसे दो योग्य शिष्यों की जरूरत है कि जो इस ग्रंथ ऐसे लिख सके। तो वो भूतबली और पुष्पदंत वहाँ आए और उन्होंने उनको वो सारा सिखाया, उपदेश दिया। अब जब ये ग्रंथ पढ़ाकर पूर्ण हुआ, उन्होंने ग्रंथ आत्मसात कर दिया। वहाँ तो सब मौखिक चलता था और वो याद ही रखते थे। तो जब ग्रंथ की समाप्ति हुई, तब इंद्रों ने, व्यंत्रों ने वगैरह आकर उनकी पूजा की, भूतबलि और पुष्पदंतों की। वहाँ तक हमने पढ़ा था। अब 72 पेज पर हम आए हैं, जहाँ पैराग्राफ शुरू हो जाता है, वहाँ से अभी हम पढ़ेंगे। तदनंतर उसी दिन वहाँ से भेजे गए उन दोनों ने, जिस दिन ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन उनके गुरु ने आज्ञा दी, अब आप चले जाओ। तो आगे नहीं हम रुकेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर देते, अपने यहाँ जैसे चलता है वैसे वहाँ नहीं चलता है। क्योंकि गुरु की आज्ञा प्रमाण है, उसमें गुरु का कुछ हेतु है जो शिष्य के लिए ही कार्यकारी होता है। तो क्या कहते हैं, गुरु के वचन अर्थात गुरु की आज्ञा अलंघनीय होती है। ये तो सहज ही, ऐसे जिन्होंने इतना रत्नतय प्रकट कर दिया है तो उनके गुरु की कोई भी आज्ञा हो, भले वो उनके विचार के अनुकूल नहीं हो, फिर भी वो आज्ञा शिरोधार्य मानते थे। हमें तो अकंपनाचार्य विष्णु कुमार वगैरह की कथा पता है। अकंपनाचार्य मुनि ने श्रुत सागर को बता दिया कि जहाँ से तूने वो बलि आदि मंत्रियों के साथ वाद विवाद चर्चा की थी, वहाँ जाकर अभी तू सामाय कर, वहाँ जाकर ध्यान में खड़ा रह जा। तो ऐसा नहीं कहे कि उसमें क्या था, मेरी क्या गलती थी, ऐसा कुछ नहीं। जो गुरु की आज्ञा है उसको प्रमाण यानी शिरोधार्य मानकर वो आज्ञा ऐसी निभाई जाती है। तो गुरु के वचन अर्थात गुरु की आज्ञा अलंघनीय होती है, ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेश्वर में, यानी वहां से वो विहार कर गए और वहां अंकलेश्वर जो गांव है गुजरात का, वहां वर्षा काल बिताया, चातुर्मास वहां उन्होंने बिताया। वर्षा योग को समाप्त कर और जिनपालित को देखकर, जिनपालित ये शिष्य का नाम है, पुष्पदंत आचार्य का शिष्य का नाम है जिनपालित, ये हमने कल उसकी प्रस्तावना में से भी बात देखी थी, जिनपालित किसका नाम है। तो जिनपालित को देखकर उसके साथ पुष्पदंत आचार्य तो वनवासी देश को चले गए और भूतबलि भट्टारक तमिल देश को चले गए। तदनंतर पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर, हो सकता है उसके पहले कुछ क्षुल्लक होगा या कुछ सामान्य श्रावक होगा, उसकी तो चर्चा यहाँ नहीं की, उनको दीक्षा दिया, यानी वे मुनि बन गए, जिनपालित मुनि बन गए। फिर 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्र बनाकर, अब ये जो हम 20 प्ररूपणाएं पढ़ने जा रहे हैं वो सूत्र रूप से उनको सिखाए, तो उसके सूत्र बनाकर और जिनपालित को पढ़ाकर, यानी जिनपालित ने भी उसको ग्रहण कर किया, उसको बराबर याद रखा, अनंतर उन्हें भूतबलि आचार्य के पास भेजा। यानी उन्होंने तब लिखना शुरू किया ही था, यानी पहले ही वो ग्रंथ तो लिख ही दिए थे भूतबलि और पुष्पदंत ने, उसके बाद जो जिनपालित के पास जिनपालित को पढ़ाया तो जिनपालित ने वो 20 प्ररूपणा लिख के रखी और वो ग्रंथ लेकर वो भूतबलि के पास आ गए। तो भूतबलि आचार्य के पास भेजा। तदनंतर जिन्होंने जिनपालित के पास 20 प्ररूपणा अंतर्गत सत प्ररूपणा के सूत्र देखे हैं, अब ये भूतबलि आचार्य का वर्णन कर रहे हैं। भूतबलि आचार्य ने क्या किया, जिनपालित के पास 20 प्ररूपणा बताने वाले सूत्र वो देखे, और क्या किया, पुष्पदंत आचार्य अल्पायु है इस प्रकार, वो बीच वाले दंड निकाल देना, वहां फुल स्टॉप नहीं चाहिए, और क्या जान लिया उन्होंने कि पुष्पदंत आचार्य अल्पायु है, इस प्रकार जिन्होंने जिनपालित से जान लिया है, पुष्पदंत आचार्य को पता था अभी मेरी आयु अल्प बाकी है, इसलिए जिनपालित को ये सभी सूत्र पढ़ाकर वो लिखवा कर उन्होंने उनको आज्ञा की कि आप भूतबलि आचार्य के पास चले जाओ। तो भूतबलि आचार्य भी समझ गए कि अभी इनके अल्पायु है और वो सूत्र देखे, दोनों ने मिलकर पूरा ही षटखंडागम जो है उसकी दोनों ने मिलकर रचना की, यानी उसका जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था दर्शन आचार्य के पास, तो उन्होंने तो 20 प्ररूपणा देखी और आगे का जो है वो तो जिनपालित को भी पता नहीं था, जो भूतबलि आचार्य को ज्ञान था, तो उन्होंने ये समझा कि अगर मैं इसको लिख के नहीं रखूंगा तो ये तो इसका लोप हो जाएगा। क्या कहते, अतएव महाकर्म प्रकृति प्रावृत का विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको, ऐसे भूतबलि, यानी जिनपालित से वे 20 प्ररूपणा देखी उन्होंने और पुष्पदंत आचार्य अल्पायु ऐसा भी जान लिया, इसलिए उनको ऐसी बुद्धि हुई कि यदि मैं इसको नहीं लिखूंगा तो ये तो इसका तो विच्छेद ही हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र जानने वाले अभी कोई नहीं बचे हैं, क्योंकि धर्मसेन आचार्य ने भी वो अल्पायु है उनको भेज दिया था, पुष्पदंत आचार्य भी अभी जो जानने वाले जो आचार्य है वे भी अभी नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी भी आयु अल्प बाकी है, इसलिए ये जो भूतबलि है उन्होंने रिमेनिंग शास्त्र पूरा कर दिया। इसलिए इस खंड सिद्धांत की अपेक्षा भूतबलि और पुष्पदंत आचार्य भी श्रुत के कर्ता कहे जाते हैं। इन दिस पर्टिकुलर जो षटखंडागम नाम का जो शास्त्र की रचना हुई है लिखित रूप से, उसके कर्ता भूतबलि और पुष्पदंत, परंतु वो डायरेक्ट कर्ता नहीं, वो तो ये परंपरा चलती आई थी उन तक। हमने देखा ना कैसे ज्ञान हीन होते होते दर्शन आचार्य को जितना ज्ञान था उतना उन्होंने भूतबलि और पुष्पदंतों को पढ़ाया, पुष्पदंत ने जिनपालित को पढ़ाकर वो लिखवा लिया और भूतबलि ने जो रिमेनिंग जो था वो भी ग्रंथ की रचना रूप से लिख दिया। इस तरह मूल ग्रंथकर्ता वर्धमान भट्टारक है, अनुग्रंथकर्ता, अनु इसके वो मूल ग्रंथ के अनुसार जो लिखा है वो अनु, हम कहते हैं ना अनुकरण करना, यानी क्या फॉलो करना। अनु शब्द है ना जो मूल है उसके समान जो है उसको अनु करते कहते। तो अनुग्रंथकर्ता गौतम स्वामी है और उपग्रंथकर्ता राग द्वेष और मोह से रहित भूत बलि पुष्पदंत इत्यादि अनेक आचार्य है। यानी जो मूल परंपरा जो उपदेश चलता आया है उसके अनुसार उसमें बहुत सारे आगे चलकर ग्रंथ की रचना हो गई, तो वे भी सभी उपग्रंथकर्ता कहेंगे। शंका, यहाँ पर कर्ता का प्ररूपण किस लिए किया गया है? उसका समाधान है, शास्त्र की प्रमाणता के दिखाने के लिए यहाँ पर कर्ता का प्ररूपण किया जाता है। हम कोई बात सुनते हैं, किसने बताया? तो यदि हमें पता है किसी योग्य यथार्थ व्यक्ति ने बताया तो हम इसका विश्वास करते हैं। वैसे ये शास्त्र की रचना किसने की है ये अगर बताए तो उसके प्रमाणता का पता चलता है। वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों में प्रमाणता आती है, ऐसा न्याय है। यदि कोई लौकिक में भी चोरी, कुटिलता, मायाचारी, छल कपट करता हो और वो शास्त्र को बताने के लिए गद्दी पर बैठेगा तो लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे, है ना? वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रमाणता, वचन में प्रमाणता आती है। अब जीव स्थान के अवतार का प्रतिपादन करते हैं। यहाँ तक तो हमने ये मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कर्ता, ये छह बातें देखी षटखंडागम संबंधी। अब जीव स्थान उसका नाम है, जो शास्त्र है, बीस प्ररूपणा जो है उसका नाम है जीव स्थान। तो अब यहाँ से जीव स्थान का प्रारंभ होता है। तो कहते हैं जीव स्थान के अवतार का प्रतिपादन करते। अवतार होना यानी उत्पत्ति होना, वो रचना की उत्पत्ति हुई, तो इसको कहते ग्रंथ का अवतार हुआ, सूत्र का अवतार हुआ। समय सार में भी आती है बात ऐसी, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं अभी सूत्र का अवतार हो रहा है ना, मूल ग्रंथ की बात की टीका लिखते समय ऐसे लिख देते हैं। अर्थात पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य ने षट खंडागम नाम है ना, षट खंड आगम, षट यानी छे, खंड यानी उसके पार्ट्स। तो ये कौन कौन से छे हैं तो उसके नाम यहाँ बताए। तो जीवस्थान, खुद्दा बंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध नामक, ये उसके नाम है। उसकी डिटेल चर्चा उसका जब जब हम अभ्यास करेंगे तभी होगी। जिस खंड षटखंडागम की रचना की उनमें से प्रकृत में ने अभी वर्तमान में अपना चालू विषय, प्रकृति ने चालू विषय में यहाँ जीवस्थान नाम के प्रथम खंड की उत्पत्ति का क्रम कहते हैं। अब यहाँ पहले खंड की बात करेंगे, उसके उत्पत्ति का क्रम क्या है उसको बताएंगे। अवतार यानी उत्पत्ति। अब वह अवतार चार प्रकार का है, यानी उसकी जो उत्पत्ति है वो चार प्रकार से है। अब ये प्रकार चलेंगे, बार बार हम याद करेंगे किस प्रकार का प्रकार आगे चल रहा है, कौन से भेद का चल रहा है। जब जब जहां आएगा प्रसंग तो हम कहेंगे यहां से हमने शुरू किया था। तो 73 पेज पर यहाँ अवतार चार प्रकार के बता रहे हैं। वो चार प्रकार है उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। अभी हर एक का यथार्थ ये अर्थ बताएंगे। उन चारों में क्या कहा, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। निक्षेप और नय तो जानते हैं, अब ये उपक्रम और अनुगम क्या है उसकी बात हम सीखेंगे। उन चारों में पहले उपक्रम का निरूपण करते हैं। अब उपक्रम की डेफिनेशन बताते हैं, उसकी परिभाषा बताते हैं कि जो अर्थ को अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। यानी जिसके द्वारा अर्थ समझ में आता है उसको कहेंगे उपक्रम। उस उपक्रम के पांच भेद हैं। अब ये भेदों के भेद शुरू हो जाएगी। कौन कौन से हैं? अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। फिर से उपक्रम हमने देखा, उपक्रम किसका भेद है तो अवतार का भेद है। अवतार के हमने चार भेद देखे थे, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। अब यहाँ उपक्रम पांच प्रकार का बता रहे हैं, तो उसमें अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये पांच उसके भेद हुए। अब वो पांच जो भेद है, हर एक भेद कितने प्रकार का है उसकी बात करेंगे। तो उसमें यानी इसको कहेंगे अनुपूर्वी उपक्रम। तो अनुपूर्वी उपक्रम कितने प्रकार का है उसकी पहले में पहले यहाँ बात हो रही है। अनुपूर्वी उपक्रम तीन प्रकार की है। अभी हमने जो पांच भेद देखे ना, उसके हर एक के भेद कितने वो पहले बताया है गाथा। अच्छा, 64 ऊपर। तिविहाय अनुपूवी दसहाणा मंच सव्यम्माणम वत्तव्वदाय तिविहा तिविहो अत्थाहि आरोवी। यानी ये अनुपूर्वी कितनी प्रकार की है आदि आदि बातें। तिविहा ने तीन विधि यानी तीन प्रकार की। दसहाणामम यानी नाम वे दस प्रकार के। छव्यहम माणम, छ ये प्रमाण, मान यानी प्रमाण के भेद छह है। वत्तव्यताय तिविहा, वक्तव्यता भी तीन प्रकार की है। और तिव्यो अत्थाही आरोवी, और तीन प्रकार अर्थाधिकार है। तो यहाँ सबसे पहले हम अनुपूर्वी जो तीन प्रकार की है उसकी चर्चा करेंगे। अनुपूर्वी के तीन भेद, एक पूर्वानुपूर्वी यानी पूर्वानुपूर्वी, उसको कहेंगे पूर्वानुपूर्वी। पश्चात अनुपूर्वी यानी बाद वाली, पश्चात अनुपूर्वी। और यथा तथानुपूर्वी, इस तरह अनुपूर्वी के तीन भेद हैं। अब वो किसको कहना पूर्वानुपूर्वी, पश्चात अनुपूर्वी आदि। तो जो वस्तु का विवेचन मूल से परिपाटी द्वारा किया जाता है उसे पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। यानी जो पहला दूसरा तीसरा आदि क्रम से जो किया जाता है उसको पूर्वानुपूर्वी कहेंगे। जैसे हमने वृषभ देव को नमस्कार किया, फिर अजितनाथ को किया, इसे क्रम से किया 24 तक, पहले से अंत तक, तो उसको पूर्वानुपूर्वी कहेंगे। उल्टा क्रम लेंगे हम, वो तो स्कूल में भी बोलते हैं ना, टू वन जा टू, टू जा टू, और फिर उल्टा भी सिखाते हैं। टू टेंजा पहले बोलेंगे, फिर टू नाइनजा बोलेंगे। पहाड़े जो होते हैं वो शुरू से या अंत से, उल्टा क्रम से, क्योंकि अच्छी तरह से याद हो जाए। तो यहाँ तो वो है, अच्छी तरह याद की बात नहीं है। पहले से अंत तक जाएंगे तो पूर्वानुपूर्वी कहेंगे। महावीर को पहले याद करेंगे, फिर पार्श्वनाथ को, फिर नेमिनाथ को, फिर नेमिनाथ, ऐसा उल्टा क्रम करेंगे तो उसको पश्चादानुपूर्वी कहेंगे। और यथा तथानुपूर्वी यानी बीच में किसी को, हमने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया, शांतिनाथ भगवान को एट रैंडम, हाँ विदाउट कोई क्रम नहीं, किसी भी बीच वाले को ही हमने याद किया, तो हम उसको कहेंगे यथा तथानुपूर्वी। अब इसको पढ़ेंगे, देखो सेकंड लाइन। जो वस्तु का विवेचन मूल से परिपाटी द्वारा किया जाता है उसे पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। उसका उदाहरण इस प्रकार है, ये तो उदाहरण दिया है। ऋषभनाथ की वंदना करता हूँ, अजितनाथ की वंदना करता हूँ इत्यादि क्रम से, ऋषभनाथ को आदि लेकर महावीर स्वामी पर्यंत क्रमवार वंदना करना, सो वंदना संबंधी पूर्वानुपूर्वी उपक्रम है। उसका क्रम कैसे, शुरू से जैसी परिपाटी है वैसे। हमने आपको पूछा छह द्रव्य कौन से है, बताओ अश्विन भाई, छह द्रव्य कौन से है, छह द्रव्यों के नाम। हाँ हाँ, आकाश और काल, ये तो हमने क्रम से बताए जैसे परिपाटी चली आ रही है। और हमने नहीं नहीं पहले हमको धर्म याद आया, फिर अधर्म याद आया, सब फिर जीव का नाम लिया, ऐसे सभी द्रव्य एक साथ है, परंतु जो परिपाटी से जैसा चला आ रहा है शुरू से अंत तक, हम उसी क्रम से कह देना तो उसको कहते हैं परिपाटी क्रम। हमने कहा उल्टा बताओ, छठा नाम किसका है, तो काल द्रव्य, फिर आकाश द्रव्य, इस तरह से। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया, ख्याल है। इसको पूर्वानुपूर्वी कहते हैं कि ऋषभनाथ की वंदना करता हूँ, अजितनाथ की वंदना करता हूँ इत्यादि क्रम से, ऋषभनाथ को आदि लेकर महावीर स्वामी पर्यंत क्रमवार वंदना करना, सो वंदना संबंधी पूर्वानुपूर्वी उपक्रम है। ये वंदना संबंधी चल रहा है, और यहाँ तो बात चलेगी ग्रंथ संबंधी पूर्वानुपूर्वी क्रम की। ग्रंथ की जैसे कहने की पद्धति पूर्वा पहले से चली आ रही है, उसी क्रम से कहना वो ग्रंथ संबंधी पूर्वानुपूर्वी क्रम होगा। जो वस्तु का विवेचन ऊपर से अर्थात अंत से लेकर आदि तक परिपाटी क्रम से, यानी क्रम तो कायम रखा परंतु अंत से शुरू तक गए हम, उसको प्रतिलोम कहते हैं। उल्टा ये जो शुरू से आखिर तक उसको अनुलोम कहते हैं और आखिर से शुरू तक उसको प्रतिलोम कहते हैं, किया जाता है उसे पश्चादानुपूरी उपक्रम कहते हैं। जैसे मोक्ष सुख की अभिलाषा से यह मैं, ये ऊपर का पढ़ेंगे पहले, हाँ 65। एस करे मी अपणमम जिनवर वसहस वढ्ढमानस सेसाणम च जिनाणम शिवसुह कंखा विलोमेण। विलोमेण लिखा ना, यानी विलोम पद्धति से, यानी पहले महावीर को याद किया। विलोम यानी विलोम कहो या प्रतिलोम कहो, उल्टा क्रम। फिर पार्श्वनाथ को याद करेंगे 23वें, फिर 22वें, फिर 21वें, इस तरह से ऋषभ तक सबको वंदना करेंगे, तो उसको विलोम या प्रतिलोम कहते हैं। तो मोक्ष सुख की अभिलाषा से यह मैं जिनवरों में श्रेष्ठ ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। किसकी आशा से? और ये हम महावीर जी क्यों जाते हैं? किस हाँ? पुत्र की आशा से। आपको नहीं मालूम महावीर जी क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र। महावीर जी सुना नहीं? जयपुर के पास है महावीर जी, सवाई माधोपुर, वहां से आगे जाना पड़ता है, दो स्टेशन आगे है। तो वो प्रसिद्ध है काहे के लिए? पुत्र प्राप्ति को नहीं होती है तो वहां जाके क्या कहते हैं, मुझे पुत्र होगा तो आपको 3 छत्र चढ़ाऊंगा, चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, और फिर वहां दिए जलाते हैं। आओ भाई, तो महावीर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, पुत्र देने के लिए। और वो हमारे गांव के महावीर नहीं चले गए, वो महावीर जी जाके वहां के महावीर ही हमें देंगे। और पहले में पहले अगर होगा तो छत्र चढ़ाऊंगा, क्या? हाँ, पहले नहीं, हाँ, पहले छत्र चढ़ाया नहीं हुआ तो ऐसे हम अन्यत्र कहीं नहीं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करना है हार्ट का, पहले 3 लाख रुपए कैश भरो। वहां तो बिल्कुल कोई विचार नहीं करता, घर भी बेचकर कैश भर देगा, परंतु यहाँ भगवान को क्या कहते हैं, मुझे पुत्र हुआ तो आपको छत्र चढ़ाऊंगा। ये पुत्र की अभिलाषा से महावीर को वंदन नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं देखो, मोक्ष सुख की अभिलाषा से यह मैं, पेज नंबर 74, जिनवरों में श्रेष्ठ ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ, और विलोम क्रम से, विलोम क्रम यानी उल्टा क्रम, उल्टे क्रम से अर्थात वर्धमान के बाद पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ के बाद नेमिनाथ को, इत्यादि क्रम से शेष जिनेन्द्रों को भी नमस्कार करता हूँ। इसको कहते हैं प्रतिलोम यानी उल्टा क्रम, शुरू से आखिर तक उसको कहते हैं अनुलोम, उसका नाम है पूर्वानुपूर्वी। और उल्टा क्रम किसी भी शास्त्र की बात बतानी है, किसी भी विषय के बारे में कथन करना है और उल्टे क्रम से हम कहेंगे तो उसको कहेंगे पश्चादानुपूर्वी। ये पूर्वानुपूर्वी और पश्चादानुपूर्वी दो भेद हुए अनुपूर्वी के। अब तीसरा जो है उसकी बात हम देखेंगे, जो कथन अनुलोम और प्रतिलोम क्रम के बिना, यानी ना शुरू से आखिर तक है और ना आखिर से शुरू तक क्रम से है, तो कैसा है? एट रैंडम कहीं से भी शुरू किया ऐसा जो होगा, ऐसे क्रम के बिना जहां कहीं से भी किया जाता है उसे यथा तथानुपूर्वी कहते हैं। पूर्वानुपूर्वी में वृषभ से लेकर महावीर तक हमने नमस्कार किया, वो वंदना संबंधी पूर्वानुपूर्वी हुआ। हमने महावीर से लेकर ऋषभ को नमस्कार किया तो वंदना संबंधी पश्चादानुपूर्वी हुआ। हम नेमिनाथ भगवान को ही डायरेक्ट नमस्कार करते हैं, वो तो हमारा यथा तथानुपूर्वी वंदना संबंधी हो जाएगा। अभी हम गाथा पढ़ेंगे 66 नंबर के। गय गवल सजल जल हर परहु असिह गलय भमर संकासो हरि उलवंस पईओ शिवमाऊवच्छो जयउ। नेमिनाथ भगवान को याद करना है तो कितने कितने सारे वो पहले उपमा देकर शरीर संबंधी वर्ण संबंधी बताया, फिर आखिर में कहेंगे ऐसे नेमिनाथ को मैं वंदन करता हूँ। क्या कहते हैं? हाथी गए ने हाथी, गय यानी गजर, हाथी, गवल यानी वो अरण्य भैंसा, सजल जल परिपूर्ण और सघन मेघ, सजल जल हर, जलधर यानी मेघ, जल को धारण करने वाला वो जलधर, और वो कैसा है? सजल यानी अभी इस मौसम में जो मेघ है आकाश में वो तो बरसाने वाला नहीं है, तो सजल मेघ कैसे होते हैं? कृष्ण वर्ण के काले होते हैं ना, काले मेघ आते तो हम समझते नहीं अभी बरसात आएगी, तो यहाँ शरीर के वर्ण को बताना है। पहले हाथी को लिया, फिर अरण्य भैंसे को लिया, और जल परिपूर्ण और सघन मेघ लिया, सघन यानी वो थिक लिया। फिर उसके पश्चात परहुव कोयल, सिही गलय भ्रमर संकासो, मयूर का कंठ और भ्रमर के समान वर्ण वाले। यहाँ तक तो इतनी सारे उपमाएं वर्ण के लिए इन्होंने इकट्ठी की। फिर हरिवूल वंश पैवो, हरिवंश को प्रदीप, हरिवंश में उत्पन्न हुए थे ना नेमिनाथ, कृष्ण का वंश कौन सा था? वो हरिवंश। और कैसे? शिव माऊ वच्छो जयऊ, शिवा शिवा देवी माता के लाल, उनके माता का नाम शिवा देवी था। ऐसे नेमिनाथ भगवान जयवंत हो, उनके पिताजी का नाम मालूम है? हाँ, समुद्र विजय, बरोबर है। इत्यादि यथा तथा अनुपूर्वी का उदाहरण समझना चाहिए। अब ये अनुपूर्वी क्या होती है उसकी बात की। यह जीव स्थान नामक शास्त्र खंड सिद्धांत की अपेक्षा पूर्वानुपूर्वी क्रम से लिखा गया है, क्योंकि षटखंडागम में जीवस्थान प्रथम खंड है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हमने अभी मैंने पूछा था छह द्रव्य कौन से है, तो पहले हमने जीव द्रव्य का नाम लिया, वैसे छह खंडों में जो परिपाटी चली आ रही थी तो पहले जीव स्थान यानी जीव संबंधी प्ररूपणा करेंगे, फिर आगे अलग अलग प्ररूपणा जो चली आ रही है परिपाटी से। तो यहाँ जो पूर्वानुपूर्वी क्रम से ये वर्णन किया है, तो पहले खंड का नाम जीव स्थान है, तो पहले जीव स्थान का वर्णन करके आगे अन्य बातें अगले खंडों में लिखी है, तो ये पूर्वानुपूर्वी क्रम है। ये यहाँ हमको उपक्रम की बात चल रही है ना, उपक्रम में पहले में पहला किसको लिया था हमने? अनुपूर्वी। अनुपूर्वी ने क्रम कैसा है? तो पूर्वानुपूर्वी क्रम से ये लिखा है, तो इसमें जीव स्थान प्रथम खंड लिखा है। वेदना कषाय प्रावृत के मध्य से अनुलोम, हाँ कहा? वेद कषाय के लिए क्या लिखा है? कृष्ण, वेदना कृष्ण, ये वेदना कषाय प्रावृत का नाम है। हाँ, ऊपर देखिए ना, देखो देखो संस्कृत में आप पढ़ेंगे वेदना कसिन पाहुड़ मज्जा दो, वेदना कषाय पाहुड़ी है ना वो, तो आगे आएगा जब हम वो पाहुड़ चालू करेंगे तो उसमें जो कुछ यथायोग्य शब्द है वो आएगा। तो वेदना कषाय प्रावृत के मध्य से अनुलोम और विलोम क्रम के बिना, अनुलोम यानी पहले से आखिर तक और विलोम यानी आखिर से पहले तक, उसके क्रम के बिना जीव स्थान के सत संख्या आदि अधिकार निकले हैं, इसलिए जीव स्थान यथा तथानुपूर्वी में भी गर्भित है, भी लगाया। यानी पहले तो खंड की अपेक्षा जीव स्थान का पहले वर्णन किया है, इसलिए वो तो पूर्वानुपूर्वी क्रम है उसका, परंतु बाद में सत संख्या अधिकार जो है वो वेदना कषाय प्रावृत के माध्यम से ही वो विदाउट एनी क्रम वो निकले है, इसलिए उसको यथा तथानु पूर्वी में भी गर्भित कर देते हैं। किंतु इस जीव स्थान खंड में केवल पश्चादानुपूर्वी संभव नहीं है, उल्टा क्रम है केवल, ऐसा है नहीं। ये बात हो गई, ये हमने किसकी बात की? अनुपूर्वी की। अनुपूर्वी किसका भेद था? उपक्रम का। देखो फिर 73 पेज देखो, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना हम किसके प्रकार देख रहे हैं। नीचे से दूसरा पैराग्राफ वहाँ हमने देखा था, उत्पत्ति यानी अवतार के चार प्रकार है, उसमें पहला है उपक्रम। अब ये उपक्रम के ही पांच भेद देखे हमने, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। इसमें से अनुपूर्वी अभी देखे, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी, ये उसका अनुक्रम कैसा है उसकी बात की। अब दूसरा कौन सा है, नाम। अब ये नाम के जो 10 प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। पहले हमने ग्रंथ के नाम जब देखा था, नाम निक्षेप में, निक्षेप वाला नाम, ये वाला नहीं, यहाँ तो उत्पत्ति अवतार के लिए नाम के भेद बताए, परंतु निमित्त में भी हमने किसी किसी अपेक्षा से नाम रखे जाते हैं, हाँ, जाति अपेक्षा, द्रव्य अपेक्षा, द्रव्य में जो संयोग वाला द्रव्य या उसी शरीर में जो उत्पन्न हुआ है उसकी अपेक्षा, समवाय वाला गुण यानी काला लाल वगैरह जो है, और फिर क्रिया जो कार्य उसका है, नर्तक गायक वगैरह, वो वहां देखे थे हमने नाम निक्षेप वाले प्रकरण में। अब यहाँ कौन सी बात चलेगी, ये जो ग्रंथ का अवतार हुआ है उसका जो नाम है, ये कोई भी जो नाम रखा जाता है किसी चीज का, तो उसमें ये 10 प्रकार होते हैं, उसकी अब चर्चा चलेगी। तभी हम आ गए नाम उपक्रम की बात चल रही है। उपक्रम का अर्थ हमने देखा था ना, अर्थ को अपने समीप करता है, नहीं जिसके कारण ये समझ में आता है उसको उपक्रम कहते हैं। तो अभी नाम उपक्रम यहाँ बताएंगे। तो नाम उपक्रम के अभी हमने देखे थे 10 भेद है, वो कौन से है उसकी चर्चा अब चलेगी। देखो नाम उपक्रम के 10 भेद है, वे इस प्रकार, गौण्य पद, नौगौण्य पद, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, अनादि सिद्धांत पद, प्राधान्य पद, नाम पद, प्रमाण पद, अवयव पद और संयोग पद। अब इसके एक एक की चर्चा करेंगे। यहाँ तो खाली नाम बता दिए, ये खाली नाम सुन लेने से हमें कुछ उसका अर्थ भाषित नहीं होता है, जब एक एक का वर्णन करेंगे तो उसमें से हमें वो शब्द की पहचान हो जाएगी। गुणों के भाव को गौण्य कहते हैं, जैसे वो ध्रुव का जो भाव है उसको हम द्रव्य कहते हैं ना, द्रव्य ध्रुव है, तो द्रव्य में क्या है, तो द्रव्य है यानी ध्रुवता है। वृक्ष में क्या है, वृक्षत्व है, उसका तो भाव कहते हैं, वो गुण का जो भाव है उसको गौण्य कहते हैं। जो पदार्थ गुणों की मुख्यता से व्यवहूत होते हैं, व्यवहूत होते हैं यानी वो उसका प्रैक्टिस में हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, फॉलोड इन प्रैक्टिस, व्यवहूत होना यानी उसके द्वारा व्यवहार करना यानी कथन करना या यूज करना उस शब्द का। तो जो पदार्थ यानी बुलाए जाते हैं, ऐसा कहे ना, गुणों के मुख्यता से जो नाम रखे जाते हैं ऐसा भी कहो तो चलेगा। तो गुणों की मुख्यता से जो व्यवहूत होते हैं वे गौण्य पदार्थ है, यानी उस नाम के कारण उस पदार्थों को या पद को भी गौण्य पद कहते हैं। वे गौण्य पदार्थ पद अर्थात स्थान या आश्रय जिन नामों के होते हैं उन्हें गौण्य पद नाम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जो पदार्थ यानी जिन नामों को गौण्य यानी जो गुण के कारण जो पदार्थ उस नाम से बुलाए जाते हैं उसको हम कहेंगे गौण्य पद। अर्थात उसी का फिर दोबारा अर्थ बताते हैं, जिस संज्ञा के व्यवहार में अपने विशेष गुण का आश्रय किया जाता है उसे गौण्य पद नाम कहते हैं, यानी उसके विशेष गुण के कारण उसका नाम ही वो रख देना। जैसे सूर्य में क्या है, ताप है, तो उसके हम तपन कहते हैं, ताप गुण है ना, वह भास गुण की अपेक्षा, भास यानी उसका वो तेज जो है प्रकाश मानता है, तो उस अपेक्षा उसको भास्कर कहते हैं। बिल्कुल कहना, आत्मा को भी वो ज्ञान कहते हैं ना, चेतन कहते हैं, वो उसके गुणों की अपेक्षा ही चेतन इत्यादि संज्ञा है। यानी सूर्य को तपन भी कहते हैं, ये तपन भी कहते और भास्कर भी कहते। जिन संज्ञाओं में गुणों की अपेक्षा न हो अर्थात जो असार्थक नाम है उन्हें नौगौण्य पद नाम कहते हैं, जैसे चंद्र स्वामी, सूर्य स्वामी, इंद्र गोप इत्यादि। चंद्र स्वामी नाम दिया तो वो क्या, चंद्र का स्वामी भी नहीं है ना ही चंद्र के समान है, हमने नाम निक्षेप में देखा तो कि विदाउट एनी कोई अर्थ के बिना भी हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, विशेषार्थ। जिन मनुष्यों के चंद्र स्वामी आदि नाम रखे जाते हैं उनमें चंद्र आदि का न तो स्वामीपना पाया जाता है और न इंद्र के वे रक्षक ही होते हैं। वहाँ नहीं ना इंद्रगुप्त, यानी वे कुछ इंद्र के रक्षक नहीं, उसका ऐसे नाम है। केवल ये नाम रूढ़ी से रखे जाते हैं, इनमें गुणादि की कुछ भी प्रधानता नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें नौगौण्य पद नाम कहते हैं। जैसे कषाय नौ कषाय ऐसे कहते ना, ऐसे ये गौण्य और नौगौण्य, यानी जिसमें गुणों की कुछ भी अपेक्षा नहीं है उसको नौगौण्य कहते हैं। कोई भी उसमें नाम रख देना। अब आगे वाला है, दो नाम हमने देखे थे, गौण्य और नौगौण्य पद, गौण्य पद और नौगौण्य पद। अब तीसरा है आदान पद नाम। तो ग्रहण किए गए द्रव्य के निमित्त से जो नाम व्यवहार में आते हैं, अर्थात जिनमें द्रव्य के निमित्त की अपेक्षा होती है, उन्हें आदान पद नाम कहते हैं। पहले हमने भी देखे थे ना, द्रव्य का निमित्त होता है, वैसे यहां भी ले लिया। उसका विशेषार्थ, आदान पद नामों में संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य के निमित्त से, संयोग के प्राप्त हुए द्रव्य को आदान कहा उन्होंने, और उसके निमित्त से जो नाम पढ़ेंगे उसको हम आदान पद नाम कहेंगे। तो उत्पन्न हुई जो अवस्था विशेष की वाचक संज्ञाएं ली जाती है, अर्थात आदान आदेय भाव की मुख्यता से, आदान यानी जो संयोग में द्रव्य है उसको आदान कहेंगे, और जो मूल जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं उसको हम आदेय कहेंगे। तो वहां आदान आदेय ना, जैसे कलश है वो पानी से भरा हुआ है उसको हम पूर्ण कलश कहेंगे, तो वहां कलश में पानी का संयोग है तो उसको हम आदान पद नाम कहेंगे। यहाँ उसी का उदाहरण दिया, देखे आदान आदेय भाव की मुख्यता से जो नाम प्रचलित होते हैं उन्हें आदान पद नाम कहते हैं। इस आदान पद नाम का गुण नाम में अंतर्भाव नहीं हो सकता है, वो उसका गुण नहीं कहला सकता क्योंकि अन्य द्रव्य का संयोग हुआ है वह। जब पानी से भरा हुआ कलश हम पूर्ण कलश कहेंगे तो वो कलश का गुण नहीं है, वो संयोग है उसका, अन्य पानी से उसका संयोग हुआ है परंतु वो कलश का अपना गुण नहीं है। हाँ, घी का घड़ा। हाँ, अभी हम सुवर्ण कलश कहेंगे तो वो कलश एक्चुअल सुवर्ण का है, हाँ, तो उसका वो गुण कहलाएगा। देखो आदान पद नाम का गुण नाम में अंतर्भाव नहीं हो सकता क्योंकि गुण नामों में आदान आदेय भाव की विवक्षा नहीं रहती, यानी उसकी चर्चा नहीं, उसकी मुख्यता नहीं, उसकी अपेक्षा नहीं है। यदि गुण नामों में भी आदान आदेय भाव की विवक्षा मान ली जाए तो गौण्य पद नाम गुणाश्रित नहीं रह सकते, क्योंकि यदि हम इसको भी पूर्ण कलश को भी वो नाम में ले लेंगे कौन से गौण्य नाम, तो फिर गौण्य नाम अलग नहीं रहेंगे, ये तो संयोग की अपेक्षा कहने में आता है, इसको आदान पद नाम कहते हैं। क्योंकि आदान आदेय भाव की मुख्यता से उनका आदान पद नामों में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए गौण्य पद नाम वो गुणाश्रित है और ये संयोग की अपेक्षा से आदान पद नाम कहते हैं। पूर्ण कलश इस पद को आदान पद नाम समझना चाहिए, ये यही का उदाहरण मैंने आपको बताया। अब शंकाकार पूछते हैं पूर्ण कलश या आदान पद नाम नहीं हो सकता है। अब शंकाकार का उसके लिए ये क्या है, हाँ, कि दलील क्या है उसकी, तो इसका खुलासा इस प्रकार है, यानी उसके प्रश्न का ही वो खुलासा कर रहे हैं कि घट की कलश यह संज्ञा ग्रहण किए गए किसी द्रव्यादि के आश्रय नहीं है, क्योंकि कलश ये जो नाम है वो तो द्रव्य की अपेक्षा, अन्य जो पानी उसमें डाला है उसकी अपेक्षा कलश ये नाम नहीं है, उसका अपना नाम कलश है, बराबर। क्योंकि कलश इस संज्ञा की द्रव्यादि के निमित्त की विवक्षे बिना ही प्रवृत्ति देखी जाती है, कलश में पानी भरो या नहीं भरो तो उसको हम कलश ही कहेंगे। अब ये शंकाकार की दलील चल रही है। इसी तरह पूर्ण यह शब्द भी आदान पद नाम नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण यह शब्द पर्याय का, पर्याप्त का वाचक, पर्याप्त यानी पूर्णता, पर्याप्त का वाचक यानी पूर्णता का वाचक होने के कारण उसका गौण्य पद नाम में अंतर्भाव हो जाता है, यानी पूर्ण शब्द भी गौण्य पद नाम है और कलश शब्द भी गौण्य पद नाम है, तो आप उसको गौण्य पद ही कहो पूर्ण कलश को, ऐसा यहाँ शंकाकार का कहना है। पूर्ण और कलश इन दोनों पदों का समास भी, समास यानी वो जोड़ शब्द हो जाता है ना, पूर्ण कलश एक शब्द हो गया तो उसको कहते हैं समास। जैसे हमने देखा ना जीव का मंगल, ये का लगाते हैं या मे लगाते हैं और एक शब्द बना देते हैं, हाँ जीव मंगल। तो पूर्ण और कलश ये जो दो पद है उनका मिलकर एक जोड़ शब्द हो गया पूर्ण कलश, उसको शंकाकार का ऐसा कहना है कि वो आदान पद नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका भाव संयोग में अंतर्भाव हो जाता है, वो कलश का भाव बता रहे वहां, ऐसा इसका कहना है। अब उसका समाधान कर, ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि जलादि द्रव्य के आधार पने की विवक्षा में पूर्ण कलश इस शब्द को आदान पद नाम माना गया है, क्योंकि जलादि द्रव्य का आधार वो कलश है। और हमने कहा जहाँ आधार वाला संबंध है, आदान आदेय संबंध है, उसको हम आदान पद नाम कहते हैं। तो जल को कलश का आधार है, उसी का फिर दोबारा अर्थ करते विशेष अर्थ। जलादि द्रव्य आदान है, आदान किसको कहता हमने कहा था, जो संयोग को प्राप्त होता है द्रव्य उसको हमने आदान कहा था, संयोग में आने वाले द्रव्य को, और कलश उसका आदेय है। इसीलिए पूर्ण कलश इस शब्द का आदान पद नाम में अंतर्भाव होता है, यह बात गौण्य पद नाम में नहीं है, इसलिए उसमें उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता। यदि गौण्य पद में इस प्रकार की विवक्षा की जाएगी तो वह गौण्य पद न कहलाकर आदान पद की कोटि में आ जाएगा। ये हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है, तो उसमें कौन से नाम कहाँ पर फिट होते हैं उसकी यहाँ चर्चा है। जब हम पूर्ण कलश कहेंगे तो वह आदान पद नाम है, गौण्य पद नाम नहीं है। संयोग की अपेक्षा लिया है, यहाँ तो जल का संयोग हुआ है, वहाँ दो भिन्न द्रव्य है उसकी चर्चा चल रही है। हाँ, पूर्ण कलश यहाँ उदाहरण में उन्होंने पूर्ण कलश को लिया है। इसी प्रकार अविधवा का इस पद का भी विचार कर आदान पद नाम में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। शंका, अक्लिष्ट अर्थात सरल आदान पद नाम कौन से है? वो कहते कि ये तो ये ऐसे क्लिष्ट नाम हमको नहीं चाहिए, इजी कुछ बता दो। उसका समाधान, वधु और अंतर्वर्तनी इत्यादि सरल आदान पद नाम समझना चाहिए। ये तो हमें तो और डिफिकल्ट, उच्चार भी नहीं कर सकते अंतर्वर्तनी, क्योंकि स्वीकृत पति की अपेक्षा वधु, वधु किसको कहना, वधु यानी वो मैरिड लेडी है उसको वधु कहते ना, तो किसकी अपेक्षा, स्वीकृत पति की अपेक्षा, ये संयोग है उसको पति का तो उसको वधु कहेंगे। और धारण किए गए गर्भस्थ पुत्र की अपेक्षा अंतर्वर्तनी, यानी प्रेग्नेंट कहो ना आप अंतर्वर्तनी के बदले, तो वहां क्या है, गर्भ का, वहां गर्भ को धारण किया है, अन्य बालक जो अन्य पदार्थ है वहां उसको धारण किया है, इसलिए उसको भी अंतर्वर्तनी संज्ञा प्रचलित है। ये तो हो गया आदान पद की बात हो गई। अब प्रतिपक्ष पद नाम चौथा, प्रतिपक्ष पद नाम, ये हमने कौन कौन से देखे, गौण्य नौगौण्य फिर आदान। अभी जो आदान नहीं है उसको हम प्रतिपक्ष में डालेंगे, वो अभाव रूप सिद्ध होगा। पहले संयोग रूप किया था, अब वो संयोग का अभाव रूप में बताएंगे। देखो ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा, कुमारी वंध्या इत्यादि प्रतिपक्ष पद नाम है, क्योंकि आदान पदों में ग्रहण किए गए दूसरे द्रव्य की निमित्तता कारण पड़ती है और यहाँ पर अन्य द्रव्य का अभाव कारण पड़ता है। वहां तो हमने वो प्रेग्नेंट वाले को लिया था और यहाँ भी वंध्या को लिया, कि जिसको वो पुत्र का यानी अभाव है, जिसको निपुत्रिक कहेंगे आप। हाँ नहीं, वंध्या में पुत्र का अभाव होता है, वंध्याश्री निपुत्रिक को के, निपुत्रिका जो है जिसको पुत्र नहीं होता, विधवा तो ऊपर आ गया, अविधवा वो ऊपर आ गया। विधवा भी शब्द इसमें ले सकते, जिसको वो वधु को वहां लिया तो यहाँ विधवा को भी ले सकते। यहाँ कुमारी को लिया क्योंकि उसका अभाव ही बता दे। हाँ, अपेक्षा उसमें क्या है, पहले थी और बाद में, इसको अभी हुआ ही नहीं है, ऐसी बातें। कुमारी और वंध्या में इसके पुत्र वही दोनों में हुआ ही नहीं की बात है। नहीं, कुमारी में पति का संयोग नहीं है ऐसा लेना, और वंध्या में उसको पुत्र का यानी कोई संबंध नहीं है। हाँ, और विधवा में था मगर वो चला गया, ऐसी अपेक्षा, वो अलग आएगी बात। तो अन्य द्रव्य का अभाव कारण पड़ता है, इसलिए आदान पद नामों के प्रतिपक्ष कारणक होने से कुमारी या वंध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष पद नाम जानना चाहिए। अभी हमने गौण्य नौगौण्य आदान पद नाम और प्रतिपक्ष पद नाम ये देखे। अब आगे वाला जो है वो अनादि सिद्धांत पद नाम। अनादि सिद्धांत में जो नाम चले आए हैं उसको अनादि सिद्धांत पद नाम कहेंगे। देखो, अनादि काल से प्रवाह रूप से चले आए सिद्धांतवाचक पदों को अनादि सिद्धांत पद नाम कहते हैं, जैसे धर्मासिकाय अधर्मासिकाय आदि। अब इसमें सभी ले लो, जीव पुद्गल जो कुछ है, जो कोई सिद्धांत में शब्द है, इसका नाम यही क्यों रखा, ये तो अनादि से चला रहे, तो अनादि से यही नाम है, ख्याल है ना, तो इसको अनादि सिद्धांत नाम कहते हैं। अपौरुषेय होने से सिद्धांत अनादि है। अपौरुषेय का अर्थ ख्याल में आता है, नहीं आता। पुरुष यानी अभी हम कहेंगे किसी व्यक्ति ने, और अपौरुषेय यानी किसी व्यक्ति ने नहीं किए है इसे, पुरुषार्थ की बात नहीं है, किसी आदमी ने बनाए हुए और किसी आदमी ने नहीं बनाए हुए, ऐसा अपौरुषेय यानी किसी मानव के द्वारा या किसी देवों के द्वारा, किसी के विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा इसकी उत्पत्ति नहीं हुई इस नाम की, अनादि से ही ये नाम चले आए। तो क्या महावीर ने बताया, नहीं आदिनाथ ने बताया, तो आदिनाथ ने उनको नाम दिया, नहीं, उसके पूर्व भूत चौबीसे में भी यही नाम थे, धर्म अधर्म आकाशकाल वगैरह, और उनके पूर्व ऐसे अनादिकाल तक चले जाओ यही नाम है। हाँ, स्वाभाविक नहीं कहते इसको, अनादि से चले आए, परंपरा अनादि की है ये, अनादिकाल पूर्व भी उसका नाम धर्म अधर्म ही था, क्या ना? सिद्धांत तो उसी को कहते ना जो चले आए डायरेक्ट तीर्थंकरों के द्वारा, जो चले आते हैं आगम और सिद्धांत। तो क्या कहते, अपौरुषेय है यानी अन्य जो मती है ना, ये जो वेद वगैरह उनके जो रचे है ऋग्वेद आदि, तो उन्होंने कहते ये ऋषियों द्वारा रचना हुई है, तो ऋषियों ने उसकी रचना की है और ऋषियों ने उसके नाम जो कुछ वहां लिखना है, जो कुछ उनकी तत्व वगैरह जो है, किसी जीव ने उसकी यानी उसकी वो मत की स्थापना की है, जैसे हम वो 363 पाखंड मतों की स्थापना की उसने, या गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की स्थापना की, वो अनादि से नहीं चला रहा था, उसने अपने नए सिद्धांत बनाए और वहां धर्म की स्थापना की, वो चालू किया उसने, ऐसे ये जो जिनेंद्र भगवान से जो मत चले आए, जो सिद्धांत है, वो किसी भगवान ने या किसी व्यक्ति ने उसको निर्माण नहीं किया है, वो अनादि से ही चले आ रहे, इसको उसको कहते हैं अपौरुषेय, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनादि का है और उसके कथन करने वाले भी अनादि से होते आए, कभी ऐसा नहीं था कि पूर्व में तीर्थंकर नहीं थे और बाद में हुए और उन्होंने वो वस्तु को बताना चालू कर दिया। अनादि का अर्थ होता है उसको कोई बिगिनिंग ही नहीं है, तो बहुत पहले कौन था, तो उसके पहले भी अनादि ही था, नो बिगिनिंग इज अनादि। हाँ हाँ, नहीं नाम की बात चल रही है, सिद्धांतों की बात चल रही है, सिद्धांत जो बताए जाते हैं, सिद्धांत वाचक जो पद है, धर्म द्रव्य है अधर्म द्रव्य है, ये किसी ने नाम नए नहीं दिए उसको, जैसे अंग्रेजी वालों ने अभी उसको इथर कहना शुरू किया, वो नॉन इथर कहना शुरू किया, वो बात नहीं है, ये धर्म अधर्म यही नाम अनादि से चले आ रहे, तो वही नाम चलेंगे, उसी को अनादि सिद्धांत पद कहेंगे, उसको इथर और नॉन इथर कहने से वो अनादि सिद्धांत नहीं होंगे, अंग्रेज लोगों को समझाने के लिए उसको वो मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ उसको नाम दे देते हैं, परंतु वो नाम अनादि से नहीं है, वो मूल नाम नहीं है, ख्याल है न? वह सिद्धांत जिस नाम रूप पद का आश्रय हो उसे अनादि सिद्धांत पद कहते हैं, वो नाम जो है उसको अनादि सिद्धांत पद कहते हैं। अब उसके बाद है प्राधान्य पद नाम। बहुत से पदार्थों के होने पर भी किसी एक पदार्थ की बहुलता आदि द्वारा प्राप्त हुई प्रधानता से जो नाम बोले जाते हैं उन्हें प्राधान्य पद नाम है, यानी बड़ा समूह है हम उसको वो मेजॉरिटी जिसके उसके उस नाम से बुला देते हैं वैसा। तो कैसे, जैसे आम्रवन, नींबवन इत्यादि। तो वन में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, परंतु मैक्सिमम पेड़ तो आम के हैं, तो हम कहेंगे ये हमारा आम्रवन है। तो उसमें अन्य भी पेड़ होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि हम कहते हैं ये हमारा आम का बगीचा है, तो उस बगीचा में अन्य भी कितने बबुल भी होगी, नीम के भी कुछ दो चार वृक्ष होंगे और भी कुछ अन्य अन्य वृक्ष होंगे, परंतु वहाँ हाँ घास भी होगा, सब सब प्रकार के पेड़ पौधे होंगे। हाँ जैन सोसाइटी, तो उसको प्रधान कहते, प्रधान पद कहते। देखो प्राधान्य पद, प्रधान पद नहीं प्राधान्य पद। देखो वन में अन्य अविवक्षित वृक्षों के रहने पर, अविवक्षित यानी जिसकी हम बात नहीं कर रहे उसकी, और विवक्षित यानी जिसकी पर्टिकुलर, विवक्षित यानी पर्टिकुलर और अविवक्षित यानी अन्य कोई, अन्य अविवक्षित वृक्षों के रहने पर भी विवक्षा से प्रधानता को प्राप्त आम और नीम के वृक्षों के कारण आम्रवन और नीम्बवन आदि नाम व्यवहार में पाए जाते हैं, यानी व्यवहार में उसकी यूटिलाइज। जैसे हम हमारे स्कूल में थे, बहुत बड़ी आमराई थी, आमराई ने बिल्कुल लगातार ऐसे आम के वृक्ष आम के वृक्ष आम के वृक्ष ही थे, तो बीच में और भी अन्य दो चार हो गए, तो ये आमराई या आम्रवन या आम्रु ऐसे कहलाते। देख अब उसके बाद होगा नाम पद, प्राधान्य पद हो गया, अब नाम पद यानी नाम पद नाम ऐसा हो गया। नाम के दस प्रकार है ना, उसमें एक प्रकार का नाम भी नाम ही है, तो नाम पद किसको कहना, गौड़ आंध्र द्रमिल इत्यादि नाम पद है। ये गौड़ आदि नाम गौड़ी आंध्री और द्रमिल भाषाओं के नाम के आधारभूत है, जिसे हम कहते गुजराती है, ये हिंदी है, हाँ ये मराठी है, तो मराठी भाषा के कारण हम वो व्यक्ति को ही मराठी कहते हैं, गुजराती भाषा के कारण किसी को हम ये गुजराती है ये मद्रासी ऐसे कहते हैं, तो उस भाषा के कारण उसका नाम ही वैसा ही पड़ा, तो उसको नाम पद है। उसके आगे है प्रमाण नाम, प्रमाण पद नाम। प्रमाण यानी माप, तो मापने के लिए जो जो कुछ हम अभी जो किलो है या मीटर है किलोमीटर है या जो कुछ हम कोई माप बताने के लिए शब्द आएंगे तो उसको कहेंगे प्रमाण पद नाम। प्रमाण बताता है, उसका मेजरमेंट बताता है, तो मेजरमेंट के लिए जो कोई शब्द आते हैं उसको प्रमाण पद हम कहें ना, ये एक शेर है, वो शेर का माप है उसको भी ये एक शेर है कहेंगे, नहीं मालूम ये तोला है ये मासा है ये वो, उसको कहेंगे प्रमाण पद नाम। देखो गणना अथवा माप की अपेक्षा से जो संज्ञाएं प्रचलित है उन्हें प्रमाण पद नाम कहते हैं, जैसे सौ हजार ये संख्या बताने वाले शब्द हैं तो उसको भी हम प्रमाण पद नाम कहेंगे। द्रोण, द्रोण किसको कहते पता है, सोलह शेर को द्रोण कहते हैं, हाँ नहीं नहीं चालीस शेर का मन था, चालीस शेर का मन होता है और ये सोलह शेर का एक द्रोण होता है। हम तो द्रोण किसको समझते हैं, वो पत्तल का आता है ना, वो पत्ते का बनाते कटोरी के इंस्टेड ऑफ कटोरी, वो द्रोण क्या कहते हैं आप उसको, दूना, हाँ तो वो द्रोण शब्द से आए, हाँ उसको भी वो द्रोण कहते हैं। शादी में पहले तो हम उसी में खाना खाते थे, शादियों में उसमें दाल वगैरह परोसी जाती थी, पत्तल में खाना खाते थे। तो सौ हजार द्रोण, खारी पल, अभी ये तो उस जमाने की जो कुछ माप है उसमें से कितने का तो अर्थ भी अपने ख्याल में नहीं आता है। पल तो मालूम है ना, पल यानी वो क्षण, हम निमिष पल भर में कहते हैं, पल भर में यानी क्षण भर में, या निमिष, निमिष यानी आँख का जब झपकारा होता है एक बार, उसके लिए कितना टाइम लगेगा उसको निमिष भी कहते हैं, वो पल मात्रा में ऐसा कहेंगे। उसका एक्चुअली माप 24 सेकंड का बताया है, 24 सेकंड पल। हाँ कहीं पढ़ा ना कल हमने, क्षण भर, क्षण कहो तो अच्छा है। अर्थ तुला, खारी का पता नहीं अर्थ, आपको कहीं मिला तो देखना। और तुला है ना, वो तुला कहते हैं वजन करते हैं, तोल, तागड़ी, तागड़ी तोलने का जो है वजन, उसको तुला कहते हैं। और कर्श, कर्श है ना, 16 मासे को कर्श कहते हैं। ये तोला मासा मालूम है ना, हाँ हाँ, वो आठ गुंज का एक मासा होता था, और 12 मासे का एक तोला। हाँ रत्ती, रत्ती रत्ती भर, कर्श ने 16 मासा।
देखो पहले के जमाने में जो अभी भी, अभी तो ग्राम में मिल रहे हैं, के जमाने में वो रत्ती होती थी, 8 रत्ती का एक मासा होता था और 12 मासे का एक तोला होता था, तो उसमें से 16 मासा इज इक्वल टू 1 कर्श।
ये सोने का व्यवसाय करते ना, उनको पता होगा। ठीक है, यानी ये माप संबंधी है, तो हम ये माप जो कुछ है उसको हम कहेंगे। नहीं नहीं, अभी हम दूध वाला आता है, तो हमने क्या कहा, नहीं जाएगा, हाँ, क्योंकि नहीं तो उसके ऐसे डेफिनेशन, ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब हम किस अपेक्षा से उसको वो नाम दे रहे हैं, वो आएगी, हम पूरे सब पढ़ेंगे ना, तो वो चर्चा आएगी। देखो ये सब प्रमाण नाम प्रमेयों में पाए जाते हैं, अर्थात इन नामों के द्वारा तत्प्रमाण वस्तु का बोध होता है। क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक पाव दूध लाओ, यानी पाव लीटर दूध लाओ, तो ये दूध को बता रहे हैं, दूध कितना है बता रहे हैं ना। यहाँ 100 लोग बैठे ऐसा जब हम कहेंगे, तो 100 शब्द किसको बताए, वो बैठे हुए लोगों का प्रमाण बता रहे, ये बात है। एक कटोरी चावल लाओ, तो हम कटोरी को नहीं बता रहे, चावल को बता रहे, चावल का प्रमाण बता रहे कितना है। ख्याल आता है ना, चिमट भर। तो क्या है, वस्तु का बोध होता है, तत् प्रमाण यानी उतने प्रमाण में जो वस्तु है उसका बोध होता है। जब हम कहते हैं जीव के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात है, कितने असंख्यात है, लोक प्रमाण, तो एक लोक कहेंगे तो लोक में जितने प्रदेश है उतने प्रमाण में जीव के भी प्रदेश है। या कालाणु द्रव्यों की संख्या हमको कहनी है, तो कितने हैं कालाणु, तो उसको भी कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात है, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो कालाणुओं की संख्या कितनी है, तो एक लोक में जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्य है। तो लोक जो ये संख्या क्या बताती है, वो जो हम द्रव्य बता रहे उसका प्रमाण कहते हैं। ये जो सारी ना आवली है ऐसे ऐसे वो बातें होती है, तो ये वहाँ प्रमाण बताना है, इसको प्रमाण पद नाम कहते हैं। अब प्रमेय ने है, ये सब प्रमाण नाम प्रमेय यानी जिसको मापा है उसको बता रहे, जो माप है। अभी हमने एक मीटर कपड़ा लाया, तो ये मीटर जो है वो किसको बता रहे, कपड़े को बता रहे, कपड़ा हमारा प्रमेय है, और उसका प्रमाण कितना है, एक मीटर, वो उसका माप है। तो जब हम कपड़ा एक मीटर लाया ऐसा कहेंगे, तो कपड़ा कितना बड़ा है उसको बता दें, हमारा प्रमेय है कपड़ा, हम किसको जान रहे हैं, कपड़े को। तो कपड़ा कितना बड़ा है, हम साड़ी वाले को पूछते हैं ये कितने हैं, 5 मीटर है कि 6 मीटर है, तो ये हमको जो प्रमेय हम जिसको जान रहे हैं उसका मेजरमेंट, उसका माप, उसकी जो कुछ हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। देखो प्रमेय यानी क्या होता है, गेय जिसको हम जान रहे हैं, अभी तो बताए ना, प्रमेय यानी जो गेय है जिसको हम जान रहे हैं, जैसे जीव कितना बड़ा है, हमको जीव को नापना है, तो जीव हमारा गेय है, तो हम उसको कहेंगे असंख्यात प्रदेशी है। तो प्रदेशों से हमने जीव के वॉल्यूम, उसका जो विस्तार है उसको नापा, तो हमारा प्रमेय तो जीव है, तो जीव कितना बड़ा है उसका माप, उसका प्रमाण हमने बता दिया, तो उसको असंख्यात प्रदेशी कहेंगे, तो उसको ये प्रमाण पद नाम हो जाएगा उसका। ख्याल है? नहीं, ये तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताया है, असंख्यात प्रदेशी कहना जीव को, परंतु अभी उसमें जो असंख्यात प्रदेशी अन्य भी द्रव्य है उसका वो नाम नहीं रख सकते हम, फिर भी फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया। वो तो संयोग है, शरीर प्रमाण है ने, शरीर जितना बड़ा है उतना बड़ा जीव है, उसका प्रमाण भी बताया हमने, अवगाहना भी कितनी बड़ी है उसको बताया, जीव की अवगाहना भी कितनी है तो शरीर प्रमाण, पर शरीर प्रमाण है परंतु शरीर में ही है, अभी शरीर प्रमाण शरीर के बाजू में नहीं बैठा है, नहीं समझे, इतना बड़ा जीव है, परंतु इतना बड़ा जीव देह प्रमाण है नहीं, इसी देह की जहाँ देह है वहीं पर उसकी भी अवगाहना है, सुपर इम्पोज है दोनों, देह प्रमाण यहाँ भी रह सकता है ना, ये भी इतना ही है, परंतु ये अन्य क्षेत्र में रहता है, ऐसा नहीं है, यहीं पर रहता है वो, जहाँ शरीर है वहीं पर जीव है, अभी कंप्यूटर आप सुपर इम्पोज कर देते ना, एक दूसरे में मिला देते हैं, वैसा कर दो, ये जीव है ये देह है, अब इनको मिला दो तो ये हो गया, तो जीव देह प्रमाण कहेंगे। हाँ तो ऐसा ही रहता है, अभी सिद्ध का जीव है, अभी इसमें से ये तो शरीर पड़ा रहा, ये शरीर बिखर गया, और वो जीव ऐसा ही, उसका शेप तो बदलता नहीं है, अभी बदलने का कोई प्रयोजन नहीं रहा, पहले उसमें विशिष्ट कर्मों का निमित्त आदि होता था, अभी कुछ नहीं रहा, तो शरीर का वे उसका जो आत्मा का आकार है वो ऐसे के ऐसा रहता है, सीधा ऐसे ही गमन होकर वहाँ सिद्धालय में विराजमान रहता है। ये अलग अलग नाम कैसे पड़ते हैं उसकी चर्चा है बस। अब अवयव पद नाम कहते हैं, अवयव दो प्रकार के हैं, उपचित अवयव और अपचित अवयव। रोगादि के निमित्त मिलने पर किसी अवयव के बढ़ जाने से जो नाम बोले जाते हैं उन्हें उपचित अवयव पद नाम कहते हैं। ये पहले हमने वो नाम के नाम निक्षेप में भी इनकी बात की थी, गलगंड, गलगंड यानी गले में ऐसा वो आता है ना क्या, हाँ थायराइड का भी होता है, या ऐसे पीछे भी मान के ऊपर भी होता है ना, हाँ हाँ वो लंब आता है, वो फाइब्रॉइड जैसा होता है कुछ, लिम्फोमा, लिम्फोमा कहते जिसको, ये फैट का ऐसा, हाँ तो ये गलगंड। शीली पद का अर्थ मुझे नहीं पता है, हो सकता है पैर बढ़ जाता है ना, वो हाथी रोग जैसा कुछ होता होगा, मेरा अनुमान है, इसका एग्जैक्ट अर्थ मुझे भी मालूम नहीं है। लंब करने है, जिसके कान लंबे हैं, लंब करने कहते उसको, आपने ये लंब करना, लंबोदर नाम सुने होंगे कहीं, नहीं सुने? वक्रतुंड लंबोदर वगैरह वगैरह जो आते हैं ना उसमें, हाँ, हाँ, ये नाम उसके कारण पड़े हैं, इत्यादि। और जो नाम अवयवों के अपचय, अपचय ने वो कट होना या छिन्न होना, अपचय अर्थात उनके छिन्न हो जाने के निमित्त से व्यवहार में आते हैं, उन्हें अपचित अवयव पद नाम कहते हैं। जैसे छिन्न करना, किसी के कान काटे किसी ने तो छिन्न करना, छिन्न नासिका, वो शूर्पणखा की स्टोरी आती ना, लक्ष्मण ने उसके नाक काट के भेज दिया था उसको, तो छिन्न नासिका यानी जिसका नाक कट गया है, ऐसा कटा हुआ है, हाथ भी कट जाता है तो हम कहते हैं ये छोटा है, पैर कट जाए या कुछ ऐसा शॉर्ट है तो लंगड़ा है, ये तो नाम उसके कारण पड़ जाते हैं। यानी उपचित अवयव यानी बढ़ जाना कोई, और अवचित यानी उसमें से छिन्न हो जाना, मूल अवयव में से छिन्न हो जाना, अवचित पद नाम। अपचित, अवचित नहीं, अपचित, अपचित अवयव और वो उपचित अवयव, देखो हमने कौन कौन देखे, गौण्य नौगौण्य आदान प्रतिपक्ष फिर प्राधान्य पद, ने पहले नाम पद लिया था, पहले प्राधान्य फिर नाम लिया है ना, क्या है ऑर्डर?
पहले है गौण्य, दूसरा है नौगौण्य,
नहीं बराबर मेरी ऑर्डर। हाँ आदान, आदान पद नाम, फिर प्रतिपक्ष, फिर अनादि सिद्धांत एक रह गया। हाँ मेरा रह गया अनादि सिद्धांत नाम, फिर प्राधान्य पद, नाम पद, प्रमाण पद और अवयव पद। अब यहाँ संयोग पद नाम का कथन कर रहे हैं, तो संयोग पद नाम का कथन करते हैं, तो संयोग किस किस का हो सकता है? द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का। तो ये द्रव्य संयोग, क्षेत्र संयोग, काल संयोग और भाव संयोग के भेद से संयोग चार प्रकार का है। उस संयोग की अपेक्षा से यहाँ नाम हो गए उसकी बात चल रही है। तो इभ्य, गौथ, दंडी, छत्री, गर्भिणी इत्यादि द्रव्य संयोग पद नाम है। उस दिन हमने बात की थी ना, वो केले वाला है आदि, जो हम संयोग की अपेक्षा से छत्री धारण करने वाला, वो छत्र धारण करने वाला छत्री, गर्भ धारण करने वाली वो गर्भिणी, तो ये द्रव्य संयोग हो जाएगा। क्योंकि धन, गूथ, दंडा, छत्ता इत्यादि द्रव्य के संयोग से ये नाम व्यवहार में आते हैं। असी, परशु इत्यादि द्रव्य संयोग पद नाम नहीं है, क्योंकि उनका आदान पद में अंतर्भाव हो जाता है। असी यानी तलवार, परशु यानी वो, परशु कहते हैं वो हथियार है। हाँ शंका, सहचारीपने की विवक्षा में असी, परशु आदि का संयोग पद नाम में अंतर्भाव हो जाएगा, ऐसा प्रश्न है। उनका भी संयोग है तो उसका संयोग पद नाम में क्यों नहीं अंतर्भाव करते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि सहचारीपने की विवक्षा होने पर उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता है। ये जो हमने गौड़ तमिल वगैरह जो देखा था उसी में उसका अंतर्भाव हो जाता है। माथुर, वालभ, दाक्षिणात्य और औदिच्य इत्यादि क्षेत्र संयोग पद नाम है, क्योंकि मथुरा आदि क्षेत्र के संयोग से माथुर आदि संज्ञाएं व्यवहार में आती है। क्षेत्र के कारण जो संज्ञाएं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्र संयोग पद नाम। जब माथुर आदि संज्ञाएं नाम रूप से विवक्षित न हो तभी उनका क्षेत्र संयोग पद में अंतर्भाव हो जाता है। आपका जो प्रश्न था ना, दोनों जगह आना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम किस अपेक्षा से उसका अटेलाइजेशन कर रहे हैं? क्योंकि ये जो माथुर वगैरह हैं, अभी यहाँ जो गौड़, आंध्र, द्रमिल वगैरह जो लेकर लिया था, कौन सी भाषा बोलने वाले उसकी अपेक्षा उसको नाम पद कहा था। अब यहाँ हम क्षेत्र की अपेक्षा बोल रहे हैं कि भाषा की अपेक्षा, तो उसका वो क्लासिफिकेशन अलग अलग होगा, अन्यथा नहीं। शारद, वासंतक इत्यादि काल संयोग पद नाम है। ये शरद ऋतु, तो शरद ऋतु के कारण उसको शारद कहेंगे, वसंत ऋतु के कारण वासंतक कहेंगे, क्योंकि शरद और वसंत ऋतु के संयोग से ये संज्ञाएं व्यवहार में आती हैं। किंतु वसंत, शरद, हेमंत इत्यादि संज्ञाओं का काल संयोग पद नामों में ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता है। क्योंकि वसंत ये जो नाम है वो तो नाम पद है, विशिष्ट ऋतु को हमने वो नाम दिया है, हेमंत आदि नाम पद में आएंगे, परंतु वसंत ऋतु के कारण अन्य किसी को ये जो नाम पड़ता है वासंत, जैसे पहले थे फाल्गुन महीने में जन्मी तो फाल्गुनी नाम रख दिया है, तो ये काल अपेक्षा से नाम है। हाँ एक काल में आता है उसको। अब भाव संयोग पद कौन है? तो क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी इत्यादि नाम भाव संयोग पद है। अभी उसका जो वहाँ कोई कसाई जीव है, लोभी है, मानी है, मायावी है, क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भावों के निमित्त से ये नाम व्यवहार में आते हैं। किंतु जिनमें स्वभाव की सदृशता कारण होती है, कारण है, ऐसी यम सिंह अग्नि और रावण आदि संज्ञाएं भाव संयोग पद रूप नहीं हो सकती क्योंकि उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता है। क्या कहते हैं? मैंने सिंह कहना किसको? पराक्रमी है तो उसी को सिंह बता देना, तो वो नाम पद में आता है। किसी को यम कहना, किसी को रावण दुष्ट है तो रावण कह देना, ये तो उसके नाम पद में आ जाएगा। उक्त 10 प्रकार के नामों से भिन्न और कोई नाम पद नहीं है क्योंकि व्यवहार में इनके अतिरिक्त अन्य नाम नहीं पाए जाते हैं। ये हमने 10 प्रकार के नाम पद देखे। विशेषार्थ। यति ऋषभ आचार्य ने कषाय प्रावृत में नाम के केवल 6 भेद बताए। अब इसमें से कोई भेद उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं तो इंस्टेड ऑफ 10 उन्होंने 6 ही भेद किए। वे ये है गौण्य पद, नौगौण्य पद, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, अपचय पद, उपचय पद। पूर्व में जो नाम के 10 भेद कहे आए हैं उनमें से यहाँ पर अनादि सिद्धांत संबंधी गुण सापेक्ष नामों का गौण्य पद और आदान पद में तथा गुण निरपेक्ष नामों का नौगौण्य पद में अंतर्भाव हो जाता है। जैसे धर्म अधर्म, ये जो धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है, ये कोई उसके गुणों के कारण ऐसा नाम नहीं है, वो नौगौण्य पद में चला जाएगा। प्राधान्य पद नामों का गौण्य पद और आदान पद में अंतर्भाव हो जाता है। क्या है? प्रमाण पद नामों का, प्रमाण पद यानी वो मेजरमेंट बताने वाला, वस्तु कितनी बड़ी है, छोटी है, कितने वजन वाली है, तो उसको बताने वाला जो प्रमाण पद नाम है वे गौण्य पद में, नाम पद नामों का नौगौण्य पद में और संयोग पद नामों का आदान पद में अंतर्भाव किया है। ये संयोग का है वो उसे आदान पद में, जो पूर्ण कलश वगैरह हमने देखा था, और संयोग को हमने अलग देखा था उसका उदाहरण। संयोग में वो धन वाला धनवान वैसे दंडी गर्भिणी वही देखा था, पूर्ण कलश वो आदान में देखा था। इस तरह से वो उसमें सिमिलैरिटी है तो उसी के अंतर वो उसको गर्भित कर देते हैं। अवयव पद नामों का उपचित पद नाम और अपचित पद नामों में अंतर्भाव हो ही जाता है। अब शंका है, उन पूर्वोक्त 10 प्रकार के नाम पदों में यह जीव स्थान कौन सा नाम पद है? क्योंकि हमारा तो लेना देना जीव स्थान, जो यहाँ प्रथम खंड शुरू हो जाता है तो उसका ये जो नाम है तो वो कौन से नाम पद में वो आता है? समाधान। जीवों के स्थानों का वर्णन करने से जीव स्थान यह गौण्य नाम पद है। हाँ, स्थान यानी वो स्थान वाला वो क्षेत्र नहीं बताते जीव, हमने कहे ना ये कितने स्थान है, कषायों के कितने स्थान है, कितने भेद हैं, उसको स्थान कहते। जीवों के स्वरूप का वर्णन है उसको जीव स्थान कहा। शास्त्र का नाम यहाँ जीव स्थान है। जीवों के स्थान अलग अलग है। अभी कषायों के अपेक्षा बताए, ज्ञान के 20 प्ररूपना जो है वो हमने अलग अलग क्राइटेरिया रख के हम जीवों के भेद बताते हैं उसको स्थान कहा है। आपको याद होगा कषायों के कितने स्थान होते हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते हैं। ज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान के तो मेन हमने 20 भेद देखे, फिर पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, ऐसे कितने सारे भेद देखे, इसको कहते हैं स्थान। 20 प्ररूपणाएं जो है, 14 मार्गणा और बाकी जो जीव समास है, गुणस्थान है, पर्याप्ति, प्राण वगैरह, संज्ञा, उसकी अपेक्षाओं से जीवों के जो अलग अलग भेद है उनको स्थान कहने में आता है। तो जीवों का ये सभी अपेक्षाओं से वर्णन है इसलिए इसका नाम है जीव स्थान। इसलिए ये गौण्य पद नाम होगा, गौण्य नाम पद। समाधान। ये हो गया अभी शंका। पहले मंगलादिक 6 अधिकारों का व्याख्यान करते समय नाम पद का व्याख्यान कर ही आए हैं। पहले इन्होंने किया था, ये नाम पद वगैरह बातें बताई थी। फिर यहाँ पर ग्रंथ के प्रारंभ में नाम पद का व्याख्यान किस लिए किया गया है? ऐसा नहीं है, समाधान कर रहे, क्योंकि पूर्व में कहे गए नाम का 10 प्रकार के नाम पदों में से किसमें अंतर्भाव होता है इसका इस कथन के द्वारा ही अन्वेषण किया है। क्योंकि पहले में तो बहुत शॉर्ट में बता दिया था तो उसमें उन्होंने ये 10 भेद करके बताया, उसका विस्तार से यहाँ वर्णन किया है। ये हमारा वो उपक्रम वाला भेद हो गया। यहाँ ग्रंथ का अवतार है यानी उत्पत्ति होती है, तो उसमें चार बातें बताई थी। पहले तो उपक्रम होता है, उपक्रम में कितनी बातें बताई, उपक्रम में आनुपूर्वी, फिर नाम, ये बताना 73 पेज निकालना। देखो आनुपूर्वी और नाम हो गया, अब प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार, ये उपक्रम के पांच भेद चल रहे। अभी तक हमने आनुपूर्वी उपक्रम देखा, उसमें पूर्वानुपूर्वी यानी पहले से आखिर तक क्रम, पश्चादानुपूर्वी यानी पीछे से उल्टा क्रम, और यथा तथानुपूर्वी यानी एट रैंडम, बीच में से किसी को भी। उसके पश्चात नाम के अभी हमने 10 प्रकार देखे। अब प्रमाण की बात करेंगे। ये प्रमाण उपक्रम की बात चल रही है। ये 73 पेज से ही ये सब किसके हम भेद देखे रहे उसकी बात यहाँ चलेगी। अब यहाँ प्रमाण नाम का उपक्रम बताएंगे। द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नए प्रमाण के भेद से प्रमाण के पांच भेद है। ये अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग उसके क्लासिफिकेशंस बताएंगे। पांच भेद द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और नए, आगे आगे प्रमाण लगाना, ये पांच भेद हुए। उनमें अभी द्रव्य प्रमाण किसको कहना, तो ये द्रव्य कितनी है संख्या में उसको द्रव्य प्रमाण कहते हैं। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, यह द्रव्य प्रमाण है। ये हमने उसको असंख्यात, ये सॉरी, हमने मान देखा था, लौकिक मान और अलौकिक मान, पर्याप्ति प्ररूपणा का जब हमने चैप्टर सीखा था, यहाँ शाम को भी एक क्लास चलाया था संख्या मान की, तो उसमें से हमने क्या देखा था, मान यानी प्रमाण में मापना, तो लौकिक माप यानी उसमें हम कपड़ा मीटर में नापते हैं, कोई द्रव पदार्थ लीटर में नापते हैं, उसके ये लौकिक मान कहेंगे। जो हमारा डिस्टेंस मापना है तो किलोमीटर वगैरह जो कुछ चलेगा। और अलौकिक मान में हमने द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान देखा। और द्रव्यमान में ये बातें देखी थी, संख्यात, असंख्यात और अनंत, और उसके भी भेद देखे थे। 21 कैसे संख्यात के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, असंख्यात के परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, और हरेक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। फिर अनंत के भी परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, उसके भी हरेक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, यानी वो 9, 9, 18 और ये 3 संख्यात वाले। कहने के लिए 3 है परंतु मध्यम के भेद तो बहुत होते हैं। जो मिनिमम है उसको हम एक एक भेद गिनाते हैं, मैक्सिमम है वो एक भेद, और बीच में एक एक से बढ़ते हुए सभी भेद, उसका कॉमन नाम हमने मध्यम रख दिया। यानी मेन कैटेगरीज कितनी होगी, 21 हो जाएगी। तो इस सबको हम कहते हैं द्रव्यमान। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत, यह द्रव्य प्रमाण है। अभी क्षेत्र प्रमाण, एक प्रदेश आदि क्षेत्र प्रमाण है। तो हम उसमें क्षेत्र प्रमाण में हमको जो मालूम है थोड़ा, एक प्रदेश भी कहेंगे, असंख्यात प्रदेश, यानी भी उसमें भी अंगुल आता है, सुना है ना हमने, या लोक आता है, तो लोक में जितने उसका क्षेत्र है उतने हमको बताएंगे, या लोक में प्रदेशों की संख्या को उसको द्रव्य में देते हैं। लोक में जितने प्रदेश है उतनी संख्या अगर बतानी है तो वो द्रव्य प्रमाण में भी आ जाएगी। और हमको लोक का जितना विस्तार है ये क्षेत्र बताना है, कितना बड़ा है उसका विस्तार, केवली समुदाय कितना बड़ा होता है, तो लोकाकाश के हर एक प्रदेश में उसका विस्तार होता है, तो हम क्षेत्र बता रहे हैं। या जीव के अवगाहना के स्थान अभी हमने देखे थे, छोटे में छोटी अवगाहना कितनी होती है और बड़े में बड़े अवगाहना कितनी होती है, वो क्षेत्र प्रमाण है उसका। जैसे संगी पंचेंद्रिय जीव है वो महामत्स्य वाला, तो उसकी अवगाहना, उसका देह का प्रमाण कितना बड़ा होता है, याद है कि भूल गए, हाँ हाँ 12.5 करोड़ घन योजन, ये तो क्षेत्र का प्रमाण होगा, ख्याल है। फिर एक समय, एक आवली आदि काल प्रमाण है। ये हम कल्पकाल कहेंगे वो भी क्या होगा, काल प्रमाण 20 कोड़ाकोड़ी सागर को बताने वाला है। ये सागर पल्ले आदि जो कुछ हम कहते हैं आवली आवली, यानी एक समय से लेकर कितने भी बड़े से बड़े काल हैं, तो वो उसको हम कहेंगे ये काल प्रमाण बता रहे। अब भाव प्रमाण में किसको लेना, तो पर्याय में जो कुछ भाव प्रकट है उसको हम भाव प्रमाण कहेंगे। अब यहाँ ज्ञान की बात करेंगे तो आभिनिबोधिक मति ज्ञान का ये दूसरा नाम है, आभिनिबोधिक। आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से भाव प्रमाण पांच प्रकार का है। ये इसमें पांच प्रकार ले लिए। अब नए द्रव्य क्षेत्र काल भाव और नए की बात है ना, तो नए प्रमाण, तो उसमें हमने देखे थे सात नए, अभी अभी हमने चर्चा की थी, फिर से दोबारा आने वाली है। अभी ये जो नए का नाम लिया है तो उसमें नयों की भी विस्तार से चर्चा फिर दोबारा आएगी। तो उसमें नयगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीन क्या हुए, द्रव्यार्थिक नए। और पर्यायार्थिक में रुजु सूत्र, क्रम से ही जाना पड़ेगा क्योंकि आगे आगे का नए उसके फिल्टर लगा के आगे चलेंगे हम। रुजु सूत्र, फिर शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, एवं भेद से नए प्रमाण सात प्रकार का है, अथवा नए प्रमाण आगे कहे गए वचन के अनुसार अनेक प्रकार का समझना चाहिए। यानी सात तो मेन भेद किए, या दूसरी अपेक्षा से नयों का वर्णन करेंगे तो अनेक कितने प्रकार होते हैं वो ऊपर हम गाथा पढ़ेंगे पहले। हाँ, वो प्रमाण के छह भेद वो अलग है, यहाँ प्रमाण यानी माप बता रहे हैं, वो बात आएगी अभी। प्रमाण के जो छह भेद होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, और फिर उसमें भी स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, और प्रत्यक्ष में भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और वो सकल प्रत्यक्ष जो कुछ होता है, प्रत्यक्ष एक्चुअल प्रत्यक्ष। तो वो प्रमाण की बात अभी अभी नहीं, अभी ये अलग पद्धति से उसको बता रहे, गाथा भी पढ़ रहे। जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा, जावदिया नयवादा तावदिया चेव होन्ति परसमया। देखो जावदिया वयन वहा, यानी जब तक जितने सारे वयन, वयन वचन, तो जितने वचन है, वचन मार्ग है, तावदिया चेव होन्ति नयवादा, उतने ही नयवाद है, यानी नयों के भेद है। क्योंकि जो जो वचन हम कहते हैं वो किसी न किसी बात को बताने वाले हैं, तो जितने वचन है उतने नए है, ऐसा कहेंगे, नयवाद है, नयों के कथन है, ऐसा कहेंगे, नयवाद यानी नयों के कथन। और जावदिया नयवादा तावदिया चेव होन्ति पर समय, और जितने नयवाद है उतने पर समय है, क्योंकि जो बात हम नए की अपेक्षा बताते हैं वही बात सर्वथा जो मान लेते हैं वो पर समय हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे हम क्या कहते हैं जीव द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा नित्य है, तो किसी ने कह गया जीव सर्वथा नित्य है, तो सर्वथा नित्य मानने वाला वो एकांत मिथ्यात्वी हो गया, तो वो पर समय हो गया। जैनियों ने कहा कि वो पर्याय क्षणभंगुर होती है, और द्रव्य का ही स्वभाव ऐसा है, परिणमनशीलता द्रव्य का स्वभाव है, तो वो अनित्य स्वभाव को बताते हैं। तो हम अपेक्षा सहित अनित्य की बात की, तो बौद्ध कहेंगे कि सभी द्रव्य सर्वथा क्षणभंगुर है, वो सर्वथा मान लेते हैं, तो ये पर समय हो गया, इसको एकांतवाद कहते हैं, इसको मिथ्या एकांत कहते हैं। तो जितने जितने हम नए की बात करेंगे उसके एक एक नए को सर्वथा मानने वाले, क्योंकि नए हमेशा सापेक्ष होते हैं, अन्य सभी जो नयों की बात है, प्रमाण की बात जिसने स्वीकार की है और बाद में जो एक अपेक्षा से बात करता है तो वो नए हुआ, परंतु प्रमाण के द्रव्य को तो नहीं जानता, द्रव्य के सभी एंगल से उसको जानता नहीं है, और एक ही बात पकड़कर पूरा द्रव्य वैसा ही है सर्वथा ऐसा जो मानता है, तो उसका वो पर समय होगा, उसका वो एकांत मिथ्यात्व होगा। तो जितने वचन मार्ग है उतने ही नए है, और जितने ये नयों के कथन है उतने ही पर समय है। ख्याल है ये क्या कहना चाहते हैं? देखो इसका नीचे अर्थ देखते हैं। जितने भी वचन मार्ग है उतने ही नयवाद, अर्थात नए के भेद है, और जितने नयवाद है उतने ही पर समय है, क्योंकि जो नयों के द्वारा जो कथन किया है उसको वैसा सर्वथा, पूरी वस्तु सर्वथा वैसी है ऐसे जो मानते हैं वो पर समय, वो एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। अब आगे प्रश्न है कि नयों में प्रमाणता कैसे संभव है? आप तो यहाँ प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो नए प्रमाण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नए तो एक देश को कहा है। प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश को जो जानता है उसको नहीं कहा था। अर्थात उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है? उस दिन ये भी बात निकली थी ना, समुद्र के एक अंश को हम समुद्र कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ क्या कहते हैं? नहीं, क्योंकि नए प्रमाण के कार्य है, इसलिए उपचार से नयों में प्रमाणता के मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। प्रमाण का कार्य क्या है? प्रमाण से जानी हुई वस्तु के सभी एंगल्स को स्वीकार कर लिया है। अब बोलते समय किसी एक की मुख्यता करके हम बोल रहे हैं, तो क्या हम प्रमाण को भूल गए हैं? क्या प्रमाण को स्वीकार किया है? और वो प्रमाण से जानी हुई वस्तु कैसी है समझाने के लिए वचन में तो क्रम पड़ेगा, तो हम वस्तु के एक एक अंश को लेके उसका वर्णन करेंगे। वस्तु तो वस्तु के होने में नित्यानित्यात्मक जो वस्तु का जो स्वभाव है, जो कोई सामान्य विशेषात्मक, तो होने में तो कोई एक साथ सभी धर्म होते हैं, परंतु एक साथ सभी धर्मों को वर्णन नहीं कर सकते। हमारे दो बच्चे हैं, दोनों ही है अभी, एक साथ है, परंतु उसके नाम कोई पूछे तो हमको क्रम से बताना पड़े, या छोटे का पहले बताओ या बड़े का बताओ, तो उसमें तो क्रम होता है। तो क्रम हम नाम कथन में तो हमको क्रम पड़ेगा, टाइम लगेगा, परंतु दोनों के अस्तित्व में कोई क्रम पड़ेगा? दोनों ही है ना। वैसे वस्तु में सभी अनंत धर्म एक साथ विद्यमान है, अभी हमको उसको जानना है, उसमें से कुछ धर्मों को, तो हम क्रम क्रम से एक एक की बात करेंगे तो उसको हम नहीं कहेंगे। ख्याल आता है ना? तो नए तो एक एक की बात करें, परंतु कौन से किसके नए की बात चल रही है? जो प्रमाण से जाना है ऑलरेडी उसकी बात है। प्रमाण का स्वीकार ही नहीं, और बस एक एंगल वैसा ही पूरी वस्तु है ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो तो झूठा नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगी, नया भास होगा वो। देखो क्या कहते हैं, नयों में प्रमाणता कैसे संभव है, अर्थात उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि नए प्रमाण के कार्य है, इसलिए उपचार से नयों में प्रमाणता के मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। विशेषार्थ, शंकाकार का अभिप्राय यह है कि जब नए वस्तु के एक अंश मात्र को ग्रहण करता है तो सर्वांश रूप से वस्तु को नहीं जानता। नित्य अंश को ग्रहण किया तो पूरे वस्तु को अभी नहीं जान रहा है, क्योंकि वस्तु नित्यानित्यात्मक है, तब उसे प्रमाण कैसे माना जाए? ये प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि प्रमाण द्वारा परिगृहित वस्तु में, प्रमाण द्वारा परिगृहित यानी पूर्ण रूप से जानी हुई वस्तु में, गृहित यानी जानी हुई वस्तु में, परि यानी परिपूर्ण रीति से जानी हुई वस्तु में, प्रमाण ज्ञान द्वारा वस्तु को परिपूर्ण रीति से जाना है, और ऐसे में ही नए की प्रवृत्ति होती है। यानी जिसने वस्तु को परिपूर्ण सभी एंगल से जाना है वही जीव नयों के द्वारा उसके एक अंश को जान रहा है। इसलिए प्रमाण का कार्य होने से उपचार से उनमें प्रमाणता आ जाती है। यहाँ तक बात हो गई, अब 82 पेज से हम कल ले लेंगे। जावाणी के